ہم 10 بھائی جو کہ کنانی ہیں، اپنے غلام یوسف کو مالک ابن زار کے ہاتھوں بعوض 18 درہم فروخت کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ یوسف کو کسی دور دراز سرزمین پر لے جائیں تاکہ یہ پھر کبھی کنان کا رخ نہ کر سکے۔ لاوی اور شمون نے سند پر مہر لگائی ہے۔ غالباً یہ شمون کی تحریر ہے۔ آپ میں سے شمون کون ہے؟
میں ہوں۔
وہ ہمارے گھر میں ایک کنیز ہوا کرتی تھی جس کا ایک گستاخ اور نافرمان بیٹا تھا، ناچار وہ لڑکا مالک نامی ایک شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔
البتہ صرف اس لیے تھی کہ ہم اس کی شرارتوں سے نجات پا لیں۔ یہ سند اسی زمانے سے متعلق ہے، آپ یقین کیجیے۔
بنیامین، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
نہیں علی جناب، ہمارا کبھی کوئی غلام اس نام و نشان کا نہیں تھا۔
اب بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ؟
یہ سند آپ کے اور بانو زلیخا کے پاس کیا کر رہی ہے؟
یہ سند میں نے یوسف سے لی تھی، وہی یوسف جسے کارواں والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔
آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تمام باتوں کا علم ہے،
ہمارے لیے یہ ناقابل یقین ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟
ہم نے اس جام سے سنا ہے۔ اسے تو پہچانتے ہیں نا آپ؟ یہ وہی طلائی جام ہے جو بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا تھا۔ یہ جام مجھ سے کلام کرتا ہے۔
یہ جام آپ سے کلام کرتا ہے؟
اس نے اپنی آواز سے تمام حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں۔ آپ وہ تمام حقائق سننا پسند کریں گے؟ جام کہتا ہے یوسف کو اس کے بھائیوں نے بہت زد و کوب کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ جام بتاتا ہے کہ وہ اس کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن لاوی مانے ہو گیا اور انہوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا، اور طے یہ پایا کہ اپنے بابا سے جا کر کہہ دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔
میں گواہ تھا کہ آپ لوگ میرے بھائی کا خون آلود کرتا بابا کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے۔
یہ سب آپ کو بنیامین نے بتایا، اس میں کوئی صداقت نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ۔
آپ کا یہ جام بالکل حقیقت بیان کر رہا ہے علی جناب، یہ ہماری رسوائی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ اس حقیقت بتانے دیجیے، ہم سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں علی جناب۔
آپ نے اپنے بھائی یوسف کو اس کاروا والوں کے ہاتھوں جس نے اسے کنویں سے باہر نکالا تھا صرف 18 درہم کے عوض فروخت کر دیا۔ آپ نے اپنے ہی بھائی کو غلامی میں دے دیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو خود اپنی مرضی سے جا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مستقبل میں اسے ایک عظیم ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ کارواں والوں نے یوسف کو رسیوں سے باندھ کر غلاموں کی صورت یہاں مصر لے آئے اور اسے بردہ فروشوں کے بازار میں لا کر بیچ ڈالا۔
میں مالک ہوں، وہی مالک جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا۔ خریدار یوسف، کچھ یاد آیا تمہیں؟
अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया।
यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था?
हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम ढाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावन मुझे माफ करे।
और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां वसूबतें सही, पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली।
फिर यूं हुआ कि जनाब अख़नातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआबिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमा रवा का ख्वाब बयान किया और उसने नहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की।
और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैसे निजात का सबब बना और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी।
और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनसा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं।
और वो यूसुफ इस वक्त अजीज़े मिस्र है।
ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई?
तुम यूसुफ हो? हमारा भाई?
क्या वाकई
तुम यूसुफ हो?
अजीज़े मिस्र
हमारा भाई यूसुफ?
यूसुफ
हमारा भाई यूसुफ?
यूसुफ
हाँ, मैं यूसुफ ही हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है।
वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंदे नबुवत बाबा से विरसे में पाया।
हाँ, मैं आपका वही भाई हूं। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी जाया नहीं करता।
देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब आप तुम हमारे साथ क्या सुलूक करोगे?
एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए?
हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ?
मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था।
लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा ये बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ।
क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लाबी?
अगर तुमने सजा ना दी मैं खुद को हलाक कर डालूंगा।
ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए।
मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मारो।
मेरे दिल में आप कभी भी भाइयों से ना कोई कीना था और ना है।
खुदा की कसम मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त सजा और हो भी क्या सकती है। अगर इन तमाम गुनाहों के बावजूद मुझे सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मर्तकब ना हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा यूसुफ। खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशा ही बना रहा। मैं सालों खामोश रहा और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी। जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, कहो कि मुझे ताजिया ने मार मार के इस बेहसी और दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर कर दे, वरना यह एहसास गुना मुझे मार डालेगा, यह एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा।
खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका, यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूं, और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिन कर गुजार रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मुझे मुझे एहसास शर्मिंदगी होता है। खुदावंद मुझे हरगिज न बख्शे अगर मैं आप भाइयों की शर्मिंदगी का बायस बनूं।
खुदावंद तू देख रहा है, सितम मैंने किया, गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश हैं?
देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है।
नेमी साहब,
हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आएंगे?
बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर ले।
ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्म फिराक कितना तवील क्यों हो गया है?
मेरा ख्याल है कि हमारे जद हजरत इब्राहिम की कहानी दोबारा दोहराई गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे।
आली जनाब,
आप में से कोई ये पैराहन बाबा तक पहुंचा सकता है?
मैं।
अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे।
अगर ऐसा हो जाए तो, अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है।
इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उठिए, ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहिम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी, آپ یہ پیراہن بابا تک پہنچا دیجئے اور اسے ان کی آنکھوں سے مس کیجئے گا، خدا نے چاہا تو بابا کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جائیے بابا کے پاس جائیے اور ان سے کہیے گا کہ وہ تمام بنی اسرائیل اور ان کے اہل و عیال کے ہمراہ ماں ساز و سامان کے مصر تشریف لے آئیں۔ میری فرما روائے مصر سے اس حوالے سے بات ہو چکی ہے، سو اب میرا ارادہ ہے کہ منفیس کے نزدیک ایک زرخیز خطے پر آپ لوگوں کی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ کورشن یہاں نزدیک ہی میں ایک بہترین خطہ ہے، میرا ارادہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے وہاں ایک نیا شہر تعمیر کرواؤں۔
خدا نے کی دار
مالک،
خدا نے کی دعا کرنا،
میرے بھائی کے لیے سامان سفر تیار کروائیے۔
خدا حافظ بھائی،
خدا نے کی دار،
با امید دیدار۔
میرے بابا کی آنکھوں کی شفا اس پیرہن میں پوشیدہ ہے۔
جلدی کریں، جلد از جلد اسے یعقوب نبی تک پہنچا دیں۔
خدا نگہدار،
با امید دیدار۔
ہاں میرے بچوں، دنیا صرف ایک کنعان تک ہی محدود نہیں ہے، دنیا میں لا تعداد شہر ہیں اور بے شمار حکمران اس دنیا میں حکومت کرتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب پورے عالم میں ایک ہی حاکم اور ایک ہی حکومت ہوگی، اور وہ حاکم بلا شبہ دنیا کا صالح ترین انسان ہوگا اور اس کی حکومت دنیا کی بہترین حکومت ہوگی۔
وہ حاکم کون ہوگا دادا جان؟
تم شمعون کے بیٹے جرشون ہو نا؟
جی دادا جان۔
یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ خدا کے صالحین بندوں میں سے ایک ہوں گے، اور وہ آخری پیغمبر کی بعثت کے بعد اپنی حکومت کو تشکیل دیں گے۔
آخری پیغمبر کو آپ جانتے ہیں دادا جان؟
اچھا، تم اشپیل، تم بنیامین کے بیٹے ہو نا؟ ہاں میں انہیں جانتا ہوں، اور دیگر پیامبر بھی انہیں جانتے ہیں، سب انہی کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا نام احمد ہے۔
احمد؟
ہاں احمد، وہ میرے چچا اسماعیل کی ذریت میں سے ہیں۔ کیسی دلاویز خوشبو ہے، یہ خوشبو اس میں احمد زبان پر لانے کی وجہ سے ہے۔ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
کیا کہا آپ نے بابا؟
اگر مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
بس کیجئے بابا، یوسف یہاں کہاں؟
آپ کو وہم ہوا ہے، ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔
یوسف کو مرے ہوئے ایک مدت ہو گئی اور آپ کو اب اس کی خوشبو آ رہی ہے؟
وہ مرا نہیں ہے، میرا یوسف مرا نہیں ہے، میں نے اپنے یوسف کو کبھی مردہ نہیں سمجھا، میرا یوسف زندہ ہے۔ آج کا یہ دن یاد رکھنا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سنا تم لوگوں نے؟
ہمیں اپنے شوہر اور بھوکے بچوں کی پڑی ہے اور انہیں اپنے یوسف کی فکر لگی ہوئی ہے۔
بخیر و عافیت
جائے حافظ و ناصر.
امید ہے کہ اگلی مرتبہ یعقوب نبی کے ہمراہ آپ سے ملاقات ہو.
خدا نگہدا.
ہم آپ کی محبتوں کے شکر گزار ہیں.
خدا نگہدا.
اللہ خیال رکھیے گا. امید دیدار.
خدا
نگہدا.
خدا
نگہدا.
خدا نگہدا. امید ہے جلد ملاقات ہوگی.
خدا نگہدا.
قحط کو آئے 5 سال ہو گئے ہیں.
اگر اب بھی بارش نہ برسی تو تمام اہل مصر ہلاک ہو جائیں گے.
نیل خشک ہو چکا ہے. مزید اگلے 2 سال تک بارش نہیں برسے گی. یہ یوسف کی پیشن گوئی ہے.
نہ جانے کیوں اتنے دنوں سے نبی خدا یوسف کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں.
کوئی آ رہا ہے. کوئی سوار کنان کی جانب آ رہا ہے. کوئی آ رہا ہے. ایک شخص کنان کی سمت آ رہا ہے. ایک شخص کنان کی سمت آتا دکھائی دے رہا ہے.
لاوی لاوی آ گیا.
لاوی ہے لیکن وہ اکیلا کیوں ہے؟
لاوی آ گیا.
سلام بابا.
سلام بیٹا.
خوش آمدید.
سپاس گزار. سلام بابا.
لاوی یہ تم ہو. کس قدر پریشان تھا میں.
مجھے خوشی ہے کہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی. میں بھی آپ کے لیے بہت فکر مند تھا.
یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف کو ساتھ لے کر آئے ہو.
خود پر قابو رکھیے. خود پر قابو رکھیے. ہاں بھی اور نہیں بھی. میں یوسف کی ایک نشانی لے کر آیا ہوں.
نشانی؟ کیسے نشانی؟
میں آپ کے لیے پیراہن یوسف لے کر آیا ہوں بابا.
وہی پیراہن جو کھلتا ہوا نقرئی رنگ کا ہے؟
ہاں وہی ہے. میں اسے پہچانتی ہوں.
یہ عبائے رسالت ہے. इसका एहतराम करो। ये पैराहन मेरे जद इब्राहिम से मेरे बाबा इसहाक और उनसे मुझ तक पहुंचा है। इसे तो यूसुफ के पास होना चाहिए था। ये तुम्हें कहां से मिला?
यूसुफ ने खुद ये पैराहन मुझे दिया बाबा।
यूसुफ,
क्या कहा तुमने?
क्या कहा तुमने बेटा? आया मैंने दुरुस्त सुना है। यूसुफ को क्या हुआ है?
यूसुफ को कुछ नहीं हुआ बाबा, हमें यूसुफ मिल गया है। हमारा भाई यूसुफ ही अजीज मिस्र है। अजीज मिस्र ही हमारा गुमशुदा यूसुफ है। हाँ बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? बाबा
परेशान
हो जाओ,
क्या हो गया बाबा?
या नबी अल्लाह, क्या हुआ?
कुछ नहीं। तो खुद कहाँ है? तुम लोगों के यूं खाली पैराहन ले आने से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। एक बार इससे पहले भी तुम लोग यूसुफ का खून आलूद कुर्ता लेकर आए थे, लेकिन यूसुफ नहीं आया था। इस बार भी पैराहन यूसुफ तुम लाए हो, लेकिन उसे फिर भी नहीं लाए।
मैं यूसुफ को अपने हमरा नहीं ला सकता था बाबा, क्योंकि वो अब अजीज मिस्र है।
मैंने ताकीद की थी कि इस पैराहन को खुद से जुदा मत करना, तो फिर उसने ये तुम्हें क्यों दे दिया?
उसने ये आपकी वजह से खुद से जुदा किया है बाबा। उसने कहा है कि ये पैराहन बाबा को शिफा बख्शेगा और ये आपकी आंखों को मुनव्वर कर देगा बाबा।
ये पैराहन शिफा बख्श है? मैंने नहीं कहा था कि यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। अगर ऐसा ना होता तो उसका पैराहन मेरी आंखों के लिए शिफा बख्श ना होता। खुदाया। परवरदिगारा।
इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है, इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है। मुबारक हो याकूब।
10 रोज से मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब लोग ही मुझे दीवाना कह रहे थे।
ये आलम इश्क से नावाकिफ है। पैराहन यूसुफ 10 रोज पहले मिस्र से आपकी जानिब भेजा गया था।
मैं 10 रोज से यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा था।
बरसों पहले भी चाहे यूसुफ से आपका गुजर हुआ था, तब बुए यूसुफ आप महसूस नहीं कर पाए थे।
तो आप इतने फासले से कैसे महसूस कर ली?
विलायत के मुकाम और मर्तबे का इदराक जितना आज आपको हुआ है उतना उस दिन नहीं था।
बस तुम्हें सही समझा था, यूसुफ मुझ पर हक के विलायत रखता है।
हाँ, आपने बरसों एक वली खुदा की फिराक में गुजारे हैं। आपकी उसी मुसलसल गिरिया और जारी और इंतजार ने आपको पहले से ज्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया है। इश्क विलायत हर एक को चश्मे बीना अदा करता है।
मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ।
आपको दिखाई दे रहा है बाबा?
हाँ मेरे बेटे, पैराने यूसुफ और इनाये थे परवरदिगार से। मुझे तुम्हारा भी नाई मिल गई है। जिस पैराहन ने इब्राहिम को आतिश नमरूद से निजात दिलाई हो, क्या वो मेरी आंखों को शिफा नहीं बख्शेगा? क्या ये तुम हो? और तुम्हारे दीगर भाई कहाँ?
परेशान मत होइए, वो भी आते ही होंगे बाबा।
और यूसुफ, क्या यूसुफ भी उनके साथ है?
नहीं बाबा, हम सब उससे मिलने जाएंगे, अपने तमाम अजीज और अकारिब के हमराह।
परवरदिगारा सिपास गुजार हूँ।
मैंने कहा था ना, बाबा यहाँ पर नहीं होंगे।
ये हुजरा बैतुल हुस्न है और बाबा अब महजून नहीं रहे। हाँ ये तो है,
यकीनन बाबा की बिनाई लौट आई है, तभी वो बरसों बाद घर गए होंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है, चूंकि मैं जानता था कि आज तुम लोग वापस आओगे सो यहीं बैठा था।
सलाम बाबा, आप यहाँ हैं?
सलाम बाबा की जान,
मैं बहुत खुश हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। बाबा बाबा आपकी बिनाई लौट आई, आप देख सकते हैं बाबा,
ये पैराहान यूसुफ का मोजज़ा है मेरे बच्चे।
सलाम बाबा,
दुरूद बर नबी खुदा।
बाबा
देख सकते हैं, देख सकते हैं,
अरे देखो बाबा की आंखें ठीक हो गई है।
दुरूद बर नबी खुदा,
तुम पर भी दुरूद हो। लेकिन माजी की तलख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती।
बाबा नाराज हैं?
वो तो जाहिर है, अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बाबा नहायत गुस्से में है।
मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं अपने भाइयों के गुनाह में उनका शरीक न था।
कितना तुम लोगों से कहा था कि तौबा कर लो, कितना कहा था कि हकीकत बताकर मुझे इस गम अंदोह से निजात दे दो।
हम जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं और हमने अपने भाई के साथ बहुत ही बुरा किया है, इसके बावजूद हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं।
तुम लोगों से ज्यादा भी दुनिया में कोई बेरहम और सितमगर होगा? तुम लोग पहले खुदावंद से तलब बख्शिश करो, ना कि मुझसे।
अगर हमें जलील और रुस्वा होने का खौफ ना होता तो हम पहले ही एतराफ़ गुनाह कर लेते।
आपकी नफरीन का खौफ हकीकत बयान करने में हायल रहा था, वगर न हम जरूर बता देते।
खुदावंद तो तुम्हारे अमाल से आगाह था। मैं कहता हूं आखिर खलवत में बारगाह खुदावंदी में अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की? ये पैराहन पहचानते हो? ये यूसुफ का वही खून आलूद कुर्ता है, इसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि जिस दिन तमाम हकीकत बरमला हो जाएगी।
तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाबा पर ये क्या सितम ढाया है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, तो अब क्या हुआ? बोलो चुप क्यों हो? यूसुफ तो जिंदा है।
तुम लोग यूसुफ के सरवरी और बर्तरी के माने होना चाहते थे ना?
इरादा खुदाबंदी से टक्कर लेना चाहते थे, शर्म नहीं आई तुम्हें?
यूसुफ ने हमें बख्श दिया, आप भी अगर अपने बड़ेपन से हमें माफ फरमा दें तो यकीनन खुदावंद भी हमसे दरगुजर फरमाएगा।
तकरीबन 40 साल तुम लोगों ने मुझे रंज दिया, अब यूं ही एक दफा ही में तलब मगफरत करके बख्शिश की तवक्को रखते हो? जाओ, चले जाओ। अब जब तक कुछ अरसे इंतजार की अजियत नहीं झेल लेते, मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं बख्शूंगा।
यानी आप इन लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे?
ये लोग आसानी से माफ कर देने पर माफी की कदर नहीं जान पाएंगे। ऐसा ना हो कि खुदा भी इन्हें माफ ना करे।
बिन्यामीन, तुम बाबा के ज्यादा नजदीक हो, हमारी सिफारिश नहीं करोगे?
क्या मुझे सिफारिश करनी चाहिए?
हम जानते हैं तुम भी अपने भाई की जुदाई में तड़पते रहे हो, लेकिन आखिर हम भी तो तुम्हारे भाई हैं।
क्या चाहते हो? तुम लोगों ने जिस तरह मेरे दिल का खून किया है और जितना मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो अब मुझसे इतनी जल्दी बख्श जाने की तवक्को मत रखो। शायद कभी वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ जाए।
दादा, मैं हूं बिन्यामीन।
अंदर आ जाओ।
बाबा, मैं इनकी सिफारिश के लिए आया हूं।
तुम किस तरह इनकी सिफारिश कर सकते हो? इनके वो मजालिम जो इन्होंने मुझ पर, तुम्हारे भाई पर, खुद तुम पर लिया और दूसरों पर ढाए हैं, उन्हें तुम क्यों कर भुला सकते हो?
जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने हमेशा मेरे भाइयों के इस गुनाह को अदावत और शैतानी वसवसों का नतीजा गिराना है।
तो क्या शैतान के हाथों खिलौना बन जाना कोई छोटा गुनाह है? शैतान की इताअत करना पैगंबर ज़ादों के लिए काबिल माफी है या निहायत सख्त सजा का मुतकाजी है? चले जाओ, फिलहाल तो चले जाओ मेरे सामने से। जाओ। तकरीबन 40 साल में इनके सामने मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता रहा, तुम्हारे भाई के फिराक में खून के आंसू बहाता रहा, यहां तक कि मेरी आंखें सफेद हो गई, मेरी बिनाई चली गई, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम ना आया। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे सच बता देते तो मेरे सारे रंजो मसायब दूर हो जाते।
मुझे माफ कर दीजिए बाबा, अगर ये लोग इसरार ना करते तो मैं इनकी सिफारिश पे ना आता।
इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाबा का ये रवैया तुम्हारे भाइयों की भलाई में ही है।
बहरहाल मैं खुदा का सिफारिश गुजार हूँ कि बिलाखिर ये फिराक खत्म हुआ। बाबा, रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे आप? भाई यूसुफ हमारे मुंतजर होंगे।
क्या हमें मिस्र जाना होगा?
जी, और अपनी तमाम आल औलाद और मां साजो सामान की। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक सरखेज खत्ता मेम्फिस के नजदीक हमारी रिहाइश के लिए मुख्तस किया है।
कल सुबह हम रवाना होंगे, कहो कि सामान सफर बांधें और रवानगी की तैयारी करें। सबको कह दो कि नया लिबास जेब तन करें और खुद को आरास्ता और मुरतब करें, ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। मुबादा वो ताने दें कि तुम्हारी कौम कबीले के लोग मुफलिस नादार हैं।
मैं समझ रहा हूँ बाबा, मुमकिन है कि वो हमारे जुहद को तंगदस्ती शुमार करें।
किनान के लोगों के लिए ये बहुत सख्त है कि उनका पैगंबर उनसे जुदा हो जाए। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ नबी की मुलाकात के लिए ना जा रहे होते तो हम आपको जरूर रोक लेते और हर किसी इतनी आसानी से ना जाने देते। ऐ नबी खुदा,
हमारे लिए भी किनान और अपने दोस्तों से दूर जाना नहायत दुश्वार है, लेकिन वली खुदा का फरमान है, लिहाजा हमें इताअत करनी होगी। फिरौनों की सरजमीन के लोग यकता परस्ती से ना आशना है। शायद यूसुफ आईने इब्राहिम की तरवीज के जरिए चाहता हो कि मिस्र में आईने यकता परस्ती राज करे।
उम्मीद करता हूं कि पैगंबर खुदा हमें फरामोश नहीं करेंगे और हमारे हक में जरूर दुआ फरमाएंगे।
खुदा आपको सलामत रखे।
खुदा ने कहा,
खुदा आपका हाफिज नासिर। खुदा हाफिज है मेरे बैतुल हुस्न, मैं तुझसे विदा होता हूं। कैसे कैसे दिन और रातें मैंने यहां ना गुजारे। ये हुजरा और ये दरख्त मुझे दुनिया की याद दिलाता है। हम में से हर शख्स सफर के दौरान कुछ अरसे महज आराम की खातिर दरख्त के साए तले बैठता है और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है, और अभी सही तौर पर अपनी इस आरजी अकामतगाह में आसुदा नहीं हो पाते कि मौत के हाथों इस नापायदार अकामतगाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।